हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जोया अबीर को शूट करने वाली ही थी कि अकरम वहाँ आ गया और उसने जोया की बंदूक का निशाना ऊपर कर दिया। इससे अबीर की जान बच गई। वहीं दूसरी ओर अरमान ने राजवीर के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने से मना कर दिया था, क्योंकि अरमान का एक सिद्धांत था कि वो अपने दुश्मनों को हमेशा अपने हाथों से सजा देता है। उसने तेजा को आदेश दिया था कि एक घंटे के अंदर अंदर राजवीर को उसके सामने ले आए, लेकिन राजवीर के मन में कुछ और ही चल रहा था। इससे पहले कि अरमान का पहरेदार तेजा उस तक पहुंचता, वो खुद ही अस्पताल अपनी तैयारी के साथ पहुंच गया था। और इससे पहले कि अरमान के हाथ अबीर के गिरेबान तक पहुंच पाते, राजवीर ने एक बंदूक निकालकर अरमान के माथे पर सटा दी थी। राजवीर, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर बंदूक तानने की? ये देखकर मेहर की चीख निकल गई। वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उठ नहीं पा रही थी। वो वहीं लेटी लेटी बोली। मेहर कमजोर होने के कारण अटक अटक कर बोल रही थी। राजवीर उसे देखकर मुस्कुराने लगा और उसने अपने साथ लाए कुछ आदमियों से अरमान के हाथ पकड़ने के लिए कहा। फिर वो मेहर के करीब गया और उसके माथे पर किस किया। रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स, तेरे भाई का एनकाउंटर नहीं कर रहा हूँ, उसने मेहर के कान में कहा। बस उसे खून के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। ये सुनकर मेहर की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसने राजवीर का गिरेबान पकड़ लिया और बोली, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तब राजवीर बोला, शश शश बेबी, अपने आप को तकलीफ मत दो, वरना बच्चे को नुकसान पहुंच जाएगा। वो एक राक्षसी हंसी हंसने लगा और अरमान वहां खड़ा हुआ बेबस राजवीर के आदमियों की कैद में फड़फड़ा रहा था। राजवीर ने मेहर से कहा, बेबी, अपने भाई के जेल जाने के बाद तुम खुद को बिल्कुल भी अकेला मत समझना, मैं हूं ना, मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मेहर ने नफरत से अपना मुंह मोड़ लिया और राजवीर अपनी जीत की खुशी में हंसने लगा। राजवीर ने अरमान के खिलाफ सबूत खत्म करने के बजाय उल्टे इकट्ठे कर लिए थे। जब से उसके अंकल शमशेर सिंह जी ने उसे अनुराधा मर्डर केस को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, वो तब से काफी परेशान था, क्योंकि वो अरमान से बनाकर रखना चाहता था। वो अरमान से दुश्मनी नहीं पालना चाहता था। लेकिन जब उस रात को अरमान ने मेहर को टॉर्चर करते हुए राजवीर को रंगे हाथ पकड़ लिया था, अब राजवीर मजबूर था। वो चाहकर भी अब अरमान से नहीं बच सकता था, इसलिए उसने अरमान को ही फंसाने का प्लान बना लिया था और अरमान के खिलाफ वाले सारे सबूत अपने अंकल शमशेर सिंह जी के सामने पेश करके अरमान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करा लिया था। इस तरह से उसके दो काम पूरे हो चुके थे। एक तो अपने अंकल शमशेर सिंह के सामने उसने खुद को एक अच्छा ऑफिसर साबित कर दिया था और साथ ही साथ अरमान से बचने के लिए उसे अरेस्ट करा दिया था। उसने सारा ऐसा इंतजाम कर दिया था कि अरमान को उम्र कैद हो या सीधा फांसी। इस तरह से वो दोनों जगह कामयाब हो गया था। राजवीर मेहर के पास से उठकर अरमान के पास आया, जो राजवीर के आदमियों की कैद में था। कम से कम 6-7 लोगों ने उसे पकड़ रखा था। तब राजवीर अरमान के पास आया और बोला, साले साहब, माफी चाहता हूँ, आपको जो तकलीफ हुई है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे मजबूरन आपको अनुराधा सेठी के खून के जुर्म में गिरफ्तार करना होगा। और वो हंसने लगा। राजवीर को देखकर अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपने दांत भींचकर जोर से अपना हाथ पकड़े हुए 3 आदमियों को नीचे गिरा दिया और अपने हाथ फ्री होते ही वो राजवीर की ओर दौड़ा और उसे पकड़कर 2-3 घूंसे उसके मुंह पर मार दिए। राजवीर के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था, लेकिन अरमान ने उसे मारना नहीं छोड़ा। पेट, कंधा, कमर, जो भी हिस्सा मिल रहा था, वो उसे वहीं मार रहा था। राजवीर के आदमी उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब व्यर्थ था। अरमान की स्टील बॉडी के आगे वे सब बौनी नजर आ रहे थे। अरमान एक एक करके राजवीर के सभी आदमियों को बुरी तरह मार रहा था। तभी राजवीर को एक कोने में लोहे का वाइफर रखा हुआ नजर आया। जब अरमान उसके एक आदमी को लात घोंसे मार रहा था, तभी उसने उस लोहे के वाइफर से उसके सिर पर जोर से मार दिया। कच्ची हड्डी में लगने की वजह से अरमान का सिर चकरा गया और वो धीरे धीरे बेहोश हो चुका था। अरमान के बेहोश होते ही राजवीर और उसके साथियों ने चैन की सांस ली। तब राजवीर ने अपने एक आदमी से कहा, जाओ लेकर जाओ इसको, और हाँ, इसको लोहे की जंजीरों से बांध कर रखना, बाकी की इसकी खातिरदारी अब हम लोग जेल में करेंगे। अरमान को अरेस्ट करके राजवीर मेहर पर एक नज़र डालता हुआ वहाँ से निकल गया। मेहर खाली खाली नज़रों से उसे देख रही थी। उसकी आँखों से एक भी आंसू नहीं निकला था। न जाने क्यों मेहर की आँखों में तूफान खड़ा हो गया था, लेकिन एक भी आंसू उसने अपनी आँखों से बाहर नहीं आने दिया था। वहीं दूसरी ओर जैसे ही रिया ने अबीर के सामने खड़े होकर ये कहा कि अरहम बलात्कारी है, ये सुनकर अबीर गहरी गहरी नज़रों से उसे देखने लगा। वो एक नज़र अक्रम को देखता तो कभी जोया तो कभी उसकी नज़रें रिया पर आकर ठहरती। उसकी आँखों में ढेर सारे सवाल थे जो उस वक्त जवाब की उम्मीद से उन तीनों की ओर देख रहे थे। मतलब आपकी बात नहीं समझा, आप कहना क्या चाहते हैं? अबीर ने रिया को देखते हुए सवाल किया, लेकिन रिया उसके सवाल के बदले खामोश रही। तभी अक्रम ने कहा, मैं बताता हूँ अबीर साहब। अबीर हैरानी से अक्रम की ओर देखने लगा और बोला, हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है। तब अक्रम ने कहा, अबीर साहब आज मैं आपको सारी बातों का मतलब समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले कि अक्रम कुछ बोलता, जोया बीच में बोल पड़ी, अक्रम भाई ये क्या करने जा रहे हैं आप? उस इंसान को सच बता रहे हैं जो पहले से सब कुछ जानता है। ये इंसान कुछ न जानने का नाटक कर रहा है। शायद आपको नहीं पता, ये इंसान उस अरहम ठाकुर और अरमान ठाकुर का सौतेला भाई है और उसी के कहने पर ये हमारी मदद करने का नाटक कर रहा था। जोया बार बार अबीर पर कुछ न कुछ इल्ज़ाम लगा रही थी। अब अबीर को बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था और वैसे भी वो अबीर राठौर था जिसके सामने बड़े बड़े लोग अपनी जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, और यहाँ तो बिना कुछ किए इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। जोया की जगह अगर ये बात और ये इल्ज़ाम कोई और लगाता तो न जाने अबीर राठौर उसके कितने टुकड़े कर चुका होता। अभी जोया कुछ और कहने वाली ही थी कि अबीर एक झटके से उसके सामने जा खड़ा हुआ और उसके कंधों को जोर से पकड़ता हुआ बोला, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में झूठ, फरेब, मक्कारी या धोखेबाजी नजर आती है? मैंने तुमसे पहले भी कहा है और मैं एक बार फिर कहता हूँ, वो अरहम मेरा सौतेला भाई है। ये आज ही मेरी सौतेली माँ ने मुझे बताया था और मैं अपनी सौतेली माँ से सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ की कातिल है। उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी थी। जिस उम्र के बच्चों को माँ के प्यार दुलार की जरूरत होती है, उस उम्र में उस औरत की वजह से मेरे हाथ में खिलौनों की जगह पर बंदूक थी। लेकिन फिर भी बचपन से लेकर आज तक केवल एक वादे के लिए जो मैंने अपने पिताजी से किया था, उस वादे के लिए मैं उस औरत की हर जरूरत पूरी करता हूँ, हर महीने अच्छी खासी रकम भेजता हूँ। लेकिन कल उस औरत ने मुझे बुलाया और बताया कि उसके बेटा और बेटी हैं। ये सुनकर मुझ पर क्या बीत रही है ये तुम सोच भी नहीं सकती हो। अबीर ने एक एक बात चबा चबा कर जोया से कही थी। जोया अपने लिए मोहब्बत उसकी आंखों में साफ देख सकती थी, लेकिन उसने फिर भी इग्नोर कर दिया। अबीर की पकड़ उसके कंधों पर और मजबूत होती जा रही थी, जो अब जोया के बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी, और अचानक वो दर्द के मारे कराह उठी। जोया को दर्द में देख अबीर के दिल में भी एक टीस सी उभर आई और उसने जल्दी से उसे छोड़ दिया। तब अक्रम जोया के सामने गया और बोला, जोया बेटा, अबीर साहब बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस दिन से हम लोग अबीर साहब के घर में रहने के लिए गए हैं, उस दिन से मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी और अबीर राठौर के साथ साथ मैंने उनके पूरे परिवार की डिटेल्स भी निकाली थीं। और जब मैंने उनके स्टोर रूम में उनकी सौतेली माँ की फ़ोटो देखी, मैं उसी वक्त समझ गया था कि ये औरत अरमान ठाकुर की माँ है। इसलिए मैंने और जब इंक्वायरी की, तब जाकर मुझे पता चला कि अबीर राठौर को तो पता भी नहीं कि उसकी सौतेली माँ का एक और परिवार भी है जो इंडिया में रहता है। जोया ने अक्रम की बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और वो खोई खोई सी जाकर पास में पड़ी हुई एक बेंच पर जा बैठी। और अभी अक्रम अबीर को सारा सच बताना ही चाहता था कि तभी अबीर राठौर का फ़ोन बज उठा। अबीर ने देखा, उसकी सौतेली माँ का फ़ोन था। अबीर ने पूरी तरह से वो फ़ोन इग्नोर कर दिया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तब लगातार उसकी सौतेली माँ ने 6-7 बार अबीर को कॉल किया, लेकिन अबीर ने एक भी कॉल नहीं उठाई। तब उसकी सौतेली माँ ने अबीर को एक व्हाट्सएप पर वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी। अबीर ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनने के लिए उस पर टैप किया और उधर उसे उसकी माँ की आवाज़ गूंजने लगी। फ़ोन स्पीकर पर था तो सबको वो ऑडियो आराम से सुनाई दे रही थी, जो कुछ यूं थी, अबीर बेटा तुम जल्दी से सेंट मेरी हॉस्पिटल पहुंच जाओ, तुम्हारे भाई अरहम पर किसी ने जानलेवा हमला किया है, मैं भी वहीं पहुंच रही हूं, तुम भी जल्द से जल्द पहुंच जाना बेटा। ये सुनकर अबीर के होश उड़ गए। तब अबीर ने कहा, उस पर किसने जानलेवा हमला किया होगा। तब अक्रम बोला, जोया ने।